नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। ट्विटर द्वारा सत्यापन के बाद जारी किए जाने वाले बैज ब्लू टिक के लिए प्रति माह $20 का शुल्क लेने की खबरों पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोमवार को कहा कि माइक्रो ब्लॉगिंग मंच ने इसकी पुष्टि नहीं की है। उन्होंने कहा कि इस पर कोई भी टिप्पणी ट्विटर से वास्तविक स्थिति जानने के बाद ही की जा सकती है। चंद्रशेखर ने कहा, यह बात ट्विटर ने नहीं की है, किसी ने इस खबर को चलाया है, इसकी ट्विटर ने पुष्टि नहीं की है। उन्हें जो कहना है उन्हें कहने दीजिए और फिर हम टिप्पणी करेंगे। मैं अनुमान के आधार पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मंत्री से उन खबरों पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया था जिनके मुताबिक ट्विटर अपने उपयोगकर्ताओं की पहचान की पुष्टि करने वाले प्रतिष्ठित ब्लू टिक मार्क के लिए शुल्क लेने पर विचार कर रहा है। इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला इंक के सीईओ एलॉन मस्क ने शुक्रवार को $44 अरब में ट्विटर का अधिग्रहण पूरा किया था। सरकार ने यह स्पष्ट किया कि वो भारतीयों के लिए सुरक्षित और विश्वसनीय इंटरनेट सुनिश्चित करने में सोशल मीडिया कंपनियों को भागीदार के रूप में देखती है। देश के 7 प्रमुख शहरों में आवासीय परिसंपत्तियों की नई आपूर्ति इस साल 44% बढ़कर 3.4 लाख इकाई पर पहुंचने की संभावना है। संपत्ति सलाहकार एनारॉक के आंकड़ों के अनुसार इस साल जनवरी से सितंबर के बीच 7 प्रमुख शहरों में नई इकाइयों की आपूर्ति 2.65 लाख इकाई पर पहुंच गई है। इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मुंबई महानगर क्षेत्र, बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता जैसे 7 शहर शामिल हैं। सलाहकार कंपनी ने कहा कि मौजूदा रुझानों को देखते हुए इन शहरों में पूरे 2022 कैलेंडर वर्ष के दौरान आपूर्ति बढ़कर 3.4 लाख इकाई से अधिक हो जाएगी। एनारॉक ने कहा, वर्ष 2022 में आपूर्ति की जाने वाली नई इकाइयों की संख्या 2014 के आंकड़ों से कम रहेगी। 2014 में शीर्ष 7 शहरों में लगभग 5.45 लाख घरों की आपूर्ति की गई थी। सिग्नेचर ग्लोबल के संस्थापक और चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल ने नई आपूर्ति को लेकर कहा कि कोविड महामारी के बीच लगातार 2 साल की सुस्त मांग के बाद रियल एस्टेट क्षेत्र में जबरदस्त वृद्धि देखी जा रही है। केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोमवार को महाराष्ट्र के रंजनगांव में एक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर विकसित करने की घोषणा की। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर में 2000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश जुटाने का लक्ष्य है। इसमें आने वाले वर्षों में हजारों नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। चंद्रशेखर ने कहा, महाराष्ट्र को एक इलेक्ट्रॉनिक्स केंद्र बनाने के लिए हमने पुणे के रंजनगांव में एक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर परियोजना को मंजूरी दी है। इसमें सरकार लगभग 500 करोड़ रुपए निवेश करेगी। ईएमसी के विकास के लिए कुल 492.85 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें से 207.98 करोड़ रुपए भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किए जाएंगे और शेष 284.87 करोड़ रुपए का योगदान महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा किया जाएगा। इंजीनियरिंग सेवा कंपनी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने सोमवार को मैसूर में अपना नया परिसर खोलने की घोषणा की। इस केंद्र से एम्बेडेड समाधान, डिजिटल उत्पादों और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में डिजाइन और विकास संबंधी सेवाएं दी जाएंगी। कंपनी ने बताया कि नए परिसर में 1300 से अधिक इंजीनियरों के बैठने की क्षमता है। LTTS ने कहा कि उसने अगले 2 वर्षों में मैसूर में 1000 से अधिक इंजीनियरों की नियुक्त करने की योजना बनाई है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने सोमवार को ओपेक और उसके सहयोगियों द्वारा तेल उत्पादन में कटौती के फैसले का बचाव किया। एक अमेरिकी दूत द्वारा दुनिया के सामने आर्थिक अनिश्चितता की चेतावनी दिए जाने के बीच इन देशों ने तेल उत्पादन में कटौती का समर्थन किया। आबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन में की गई इन टिप्पणियों से अमेरिका और खाड़ी के अरब देशों के बीच व्यापक विभाजन देखने को मिला। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री अब्दुल अजीज बिन सलमान ने अपनी संक्षिप्त टिप्पणी में इस बारे में संकेत किया। गौरतलब है कि आगामी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन मिस्र और UAE में आयोजित किया जाएगा। सलमान ने कहा, हमने ऐसा किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए किया। UAE के ऊर्जा मंत्री सुहेल अल मजूरई ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ओपेक और उसके सहयोगी देश उत्पादन बढ़ाने के लिए तैयार हैं। हालांकि उत्पादन कब तक बढ़ाया जाएगा इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कटौती के फैसले का बचाव किया। ऊर्जा मामलों के लिए अमेरिकी दूत अमोस होचस्टीन ने कहा, मुझे लगता है कि हम विश्व स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता की दहलीज पर खड़े हैं। रूसी एयरलाइंस एरोफ्लोट ने सोमवार को कहा कि वो 2 नवंबर से मॉस्को से गोवा के लिए अपनी उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। एयरलाइन इस समय मॉस्को से दिल्ली के बीच सप्ताह में 2 बार अपनी हवाई सेवाएं संचालित करती है। बयान में कहा गया कि एरोफ्लोट अपने एयरबस A330 विमान के साथ हर बुधवार, शनिवार और रविवार को मॉस्को से गोवा के लिए उड़ान सेवाएं संचालित करेगी। भारत एरोफ्लोट की तरफ से बुकिंग करने वाली कंपनी डेलमोस एविएशन के निदेशक नवीन राव ने कहा कि ये एक अच्छी शुरुआत है और इससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही माल की आवाजाही में सुविधा बढ़ेगी। योटा इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में अगले 5-7 वर्षों के दौरान डेटा सेंटर कारोबार में 39,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने सोमवार को ये जानकारी दी। हीरा नंदानी समूह की फर्म ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।